सूर सेनो जदुपति ही मथुरा उमा वसनपुरी मथुरा सूर सेनांच विषयान बुझे पुरा राजधानी तथा साभ सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भवान जत्र नित्यम सन्निहितो हरि तस्याम तु करहिचि छौरिः वसुदेवः कृतोद्वह देवक्या सूर्यया सार्धम् प्रयाणे रथमारुहत् उग्रसेन सुतः कंस स्वसुः प्रिय चिकित्सया रश्मिन् हयानां जग्राह रूपमय रक्षतर्वितः आवृत्ति दो ही श्लोक लिखा गया है, एक एक श्लोक पढ़ी है। शेष श्लोकों को इस पुस्तिका में देखिए। सत्ताईस
श्री
शुक्रवार
सा मथुरा नाम का
श्याम तो उसी मथुरा में कर ही चित किसी समय वसुदेव कृतोद्वह वसुदेव नाम के यादव विवाह किए। विवाह करके वे नौ विवाहिता पत्नी के साथ श्रीमती देवकी के साथ अपने घर जाने के लिए विदा हुए। उग्रसेन सुत कंस, उग्रसेन महाराज का पुत्र जिसका नाम कंस था, स्वसु प्रिय चिकित्सा अपनी चचेरी बहन देवकी का प्रिय करने के लिए स्वयं राजकुमार होते हुए भी सारथी को हटा करके घोड़ों की लगाम पकड़ लिया। हयानम जगहीन, जगना है घोड़ों की रश्मि, लगाम को पकड़ लिया। चार घोड़े थे रथ में, ये छोटा प्रसंग है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उग्रसेन महाराज का पुत्र राजकुमार बहन का प्रिय करने के लिए हयानम घोड़ों की रश्मि लगाम पकड़ लिया, उस समय देवकी को विदा करने के लिए अपने पति सहित देवकी को विदा करने के लिए बहुत से राजा वहां जुटे थे। चूंकि सूर के पुत्र हैं वसुदेव जी, सूर भी एक राजा थे, उस वंश में वसुदेव जी जन्मे हैं, तो इसलिए राजाओं का निमंत्रण सब जगह गया था, सब उसमें आए थे। और जब वसुदेव जी विदा होने लगे, प्रयाणे रथम आरुहत, रथ पर चढ़े और उग्रसेन महाराज का पुत्र कंस स्वयं रथ हाँक रहा, सारथी को हटा करके। यद्यपि यह काम उसके लिए उचित नहीं था, लेकिन देवकी से स्नेह के कारण, देवकी का प्रिय करने के लिए रथ चढ़ाने लगे। प्रसंग छोटा है, केवल इतना ही है कि कंस रथ चला रहा था और तब तक आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी को सुन करके उसका सारा स्नेह चला गया देवकी के प्रति, वो उसका वध करने के लिए तत्पर हो गया। वसुदेव जी उसे समझा रहे हैं, यही प्रसंग है। तस्यां तु कर्हिचित् छौरिः सुरपुत्र, वसुदेव जी उसी मथुरापुरी में कीर्तोद्भव विवाह किए और नवविवाहिता देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर चढ़े। उस रथ को उसमें जुटे घोड़ों को हांकने का काम कंस कर रहा था, बहुत स्नेह था देवकी के प्रति, रथ चला रहा था और बीच बीच में वसुदेव जी से प्रेमालाप भी करता था, बहुत प्रेम से बात करता था। जिया जी, यह देवकी बहुत प्रेम से पली है, बहुत सुकुमार है और अभी बालिका है, 14 वर्ष की है, तो आप स्नेह कीजिएगा, अपने घर इस पर ध्यान रखिएगा, यह बहुत संकोची स्वभाव की है, कभी कुछ मांगती नहीं है। इस तरह की बातें वो कह रहा था, वसुदेव जी को जीजा जी कह रहा था। और बीच बीच में देवकी पर देखता भी था स्नेह से। देवकी उस समय गदगद थी, रो रही थी अपनी माता के वियोग में। अपनी बहनों के वियोग में, अपनी ननद के वियोग में। वसुदेव जी की 5 बहनें थी, वे सभी आई हुई थी। उन 5ों का विवाह बहुत बड़े बड़े राजाओं से हुआ था, जिसमें सबसे ज्येष्ठ थी कुंती। कुंती का विवाह हस्तिनापुर में हुआ था महाराज पांडु के साथ। और एक बहन राजा थी, देवी थी, वसुदेव जी की बहन, तो उसका विवाह चेदीराज दमघोष से हुआ था। उसी दमघोष से शिशुपाल जन्म लिया था। महाराज युधिष्ठिर से नारद जी कहते हैं कि दमघोष आपके मौसी का, युधिष्ठिर महाराज से, आपके मौसी का पुत्र था, मौसेरा भाई था। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं वो मौसी थी कुंती की बहन। उसी से शिशुपाल हुआ था। यह शिशुपाल दमघोष महाराज की पुत्री रुक्मिणी जी से विवाह करना चाहता था, लेकिन वो हुआ नहीं, संजोग से कट गया विवाह। रुक्मिणी स्वयं पत्र लिखी भगवान को कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। इसलिए भगवान द्वारका से गए कुंडनपुर नागपुर के पास और रुक्मिणी जी का हरण किए। इस कारण शिशुपाल बैर बांध लिया। वो सब समय कृष्ण की निंदा करता था। कुंती का विवाह पांडु महाराज से हुआ और उसके 3 पुत्र हुए। बहुत महान महात्मा युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। इसके साथ 2 पुत्र और भी हुए पांडु को माद्री से। इस प्रकार से 5 पांडव कहे जाते हैं, महाराज पांडु के 5 पुत्र। ये सभी भगवान के बहुत प्रिय हुए हैं। तो यहां संक्षेप में ये कथा है कि घोड़ों की लगाम को पकड़ करके बहुत धीरे धीरे रथ चला रहा था कंस। राजा सब भरे थे, सैकड़ों रथ चल रहे थे। बहुत बड़ा फेस्टिवल था देवकी का विवाह। उस विवाह के अवसर पर अनेक संबंधी आए थे, सब विदा होते समय वसुदेव जी के साथ चले। देवकी से अतिशय स्नेह के कारण देवकी का प्रिय करने के लिए रथ की बागडोर कंस पकड़ लिया और चलाने लगा, रथ हाँक रहा था, बीच बीच में प्रेम से देखता था अपनी बहन को। वो शोक में थी, मातृ वियोग हुआ, माता का संग छूट गया, यद्यपि भीतर से बहुत प्रसन्नता थी लेकिन किसी कन्या के लिए यह भी एक दुख का विषय है कि माँ छूट रही है, बहनें छूट रही हैं। ननद वगैरह सब छूट रही थी, रोती थी, रोती हुई जा रही थी रथ पर। तब तक उसी समय सारी स्तब्धता को भंग करते हुए आकाशवाणी हुई, विदा के समय देवकी को बहुत सा दहेज दिए देवक महाराज। देवक भी एक राजा थे, उनकी पुत्री देवकी, तो देवकी को दहेज में क्या क्या दिए देवक महाराज, इसका वर्णन है। चतुर्पारी बरहम गजानन हेम मागिना, राजा देवक ने 400 हाथी दिया, हेम मालिनाम गजानन, जिन्हें जिन हाथियों को सोने की मालाएं पहनाई गई थी, और पतली पतली माला नहीं, हाथी के साइज के अनुसार बहुत मोटी मोटी माला, तो अनेक अलंकारों से सजाया गया था हाथियों को। गजानन हेम मागिना, गजों को हाथियों को हेम माली स्वर्ण की माला से विभूषित किया गया था। अश्वानाम अयुतम सार्वभौम, और घोड़े 10,000, और फिर आधा अर्थात 5,000-15,000 दिए थे। क्षत्रियों के विवाह के बाद तो सब दहेज दिए ही जाते हैं, तो देवक जी ने 400 हाथी, 15,000 घोड़े, रथानम चत्रिशत शतम, इसके साथ ही सोने के रथ, सोने से मढ़े हुए रथ दिया 18,000, नहीं 1800 सोने से मढ़े हुए रथ। उन रथों पर बहुत सी सामग्रियां लादी गई थी, जिस रथ को कंस हाँक रहा था उसे अच्छी प्रकार से मालाओं से, फूल की मालाओं से और सोने के पत्थर से सजाया गया था। उसी समय आकाशवाणी हुई कंस को संबोधित करके। पहले उसने आकाशवाणी ने कहा, रे रे अरे कंस, जिस देवकी को इतना स्नेह से पति के घर पहुंचा रहे हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, आकाशवाणी आकाश से हुई, वक्ता दिखाई नहीं दे रहा था। कंस ने देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। ये शंका होती है कि वाणी किसकी थी, किसने भविष्यवाणी किया कि देवकी का आठवा पुत्र तुम्हारा वध करेगा। अस्या अष्टमो गर्भो हन्ते हन्ता हनिष्यति, तुम्हारा वध करेगा। जिस देवकी को इतना स्नेह से तुम विदा कर रहे हो, तो उसी का आठवां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। वक्ता दिखाई नहीं दे रहा था। यह स्पष्ट कहा नहीं गया है कि वाणी किसकी थी। वास्तव में आकाश की वाणी नहीं थी, आकाश से कोई बोला। कुछ टीकाकार ऐसा कहते हैं कि भगवान खुद बोले, लेकिन ये निष्प्रयोजन बात है। भगवान क्यों बोलेंगे, भगवान को क्या भय है, उनका क्या प्रयोजन है कंस को भयभीत करने का। वे नहीं बोले, कोई मनुष्य नहीं बोला। कहीं मनुष्य बोलता तो दिखाई देता ना, अनेक लोग थे। कंस चारों तरफ देख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जमीन पर से बोला मनुष्य, नहीं। आकाश में कौन बोला, ये देवता लोग घबरा करके बोल दिए। ये भगवान का स्वभाव जानते हैं कि भगवान थोड़ी सी सेवा करने पर प्रसन्न हो जाते हैं। यह कंस सेवा कर रहा है भगवान के माता पिता की, देवकी वसुदेव का सारथी बना हुआ है। तो भगवान अवतार लेने में विलंब करेंगे, बहुत खुशी हो रही है देवताओं को कि अब तो वसुदेव जी का विवाह हो गया, देवकी जा रही है उनके घर अब कुछ ही वर्ष में भगवान का अवतार होगा, जन्म लेंगे और कंस मारा जाएगा। ये खुशी हो रही है देवताओं से। दैत्यों का, असुरों का सदा झगड़ा रहता है। देवता भी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि दैत्य कब कमजोर होते हैं। कोई उपाय न देख करके भगवान से प्रार्थना किए थे, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को समाधि में कहा कि मैं मथुरा में जदुवंश में और जन्म लूंगा और असुरों का वध करूंगा, मेरे साथ मेरे अंश श्री संकर्षण भी जन्म लेंगे तेरा बड़ा भाई बनकर, और मेरी माया जोग माया भी जन्म लेंगे। तो ब्रह्मा जी सब देवताओं को सारी बात बताए कि भगवान ने ये कहा है, बिल्कुल सत्य होगी ये वाणी। तो देवता बड़े खुशी में थे, लेकिन जब देवताओं ने देखा कि कौन सेवा कर रहा है, आधा थाक रहा है, तब देवताओं को घबराहट हुई कि ये उन भगवान के माता पिता की सेवा कर रहा है, इस सेवा से भगवान कृतज्ञ होंगे। और अवतार लेने में विलंब करेगा। इसलिए उन लोगों ने यह आकाशवाणी कर दिया। शायद इंद्रदेव या वरुण कोई भी देवता होंगे, एक देवता बोला वेद कंस अस्यस्तम अष्टमो गर्भो याम बहसे बुध। अरे अबुध, अरे मूर्ख, रेर अरेर मार करके आकाशवाणी ने कहा अरे दुष्ट कंस, अरे मूर्ख, तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है कि तुम अपने शत्रु के मां को उसके पति घर पहुंचा रहे। तुम्हारा शत्रु है वास्तव में विष्णु, और विष्णु की मां देवकी होगी, तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है अपने शत्रु की मां को स्नेह से इस तरह विदा करना। बस इतना ही सुनना था, इतुक्त सखल पाप भोजा नाम कुल पांच न भगनी हम तुम्हार अब खड़क पाणी कसे गए। इतना सुनना था कि कंस देवकी की चोटी किस बंध को पकड़ लिया, उसके हाथ लंबे थे, मजबूत थे, तो देवकी के चोटी को पकड़ लिया और ऐसे सामने करके देवकी का गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया। इस अवसर पर सुखदेव गोस्वामी गाली देते हुए कंस को कहते हैं, निंदा करते हुए, खल, सबसे पहली निंदा, कंस खल था, पाप मूर्तिमान पाप था, तो पापी ही नहीं था, स्वयं पाप ही था। भोजा नाम कल्पांसना भोजवंश की कीर्ति को धूमिल करने वाला, इतना पवित्र वंश है भोज, लेकिन भोजवंश में का कलंक ही जन्म लिया था। राजाओं के बीच में उस महाउत्सव के बीच भगनी भंगतु मारब्ध, वो भगनी को अपनी छोटी बहन को मारने के लिए जान मार प्राण नाश के लिए तैयार हो गया। खड़क पाणी दाहिने हाथ में वो तलवार ले लिया, उत्तोलन कर लिया, मयान से निकाल करके देवकी के गला को काटना चाहता था। सुखदेव जी कहते हैं आरब्ध, प्रारंभ कर दिया, मतलब जब तलवार खींच लिया है और चोटी पकड़ लिया तब एक प्रारंभ ही है, अपनी बहन को मारना प्रारंभ कर दिया। देवकी भय से सिमट रही थी, कांप रही थी, उस अवसर पर श्री वसुदेव जी जो परम धैर्यवान है कंस को समझाने लगे। सबसे पहले वे साम नीति अवलंबन किए और भेद नीति, वे कंस का गुणगान करने लगे, वसुदेव जी समझाने लगे, आप वीर हैं, बड़े बड़े सूरवीर आपकी प्रशंसा करते हैं, श्लाघनीय गुण सूर्य भगवान बहुत जसस कर, बड़े बड़े सूरवीर आपकी प्रशंसा करते हैं, तो आप बहुत बड़े वीरों के द्वारा प्रशंसित होकर भी एक स्त्री की हत्या मत कीजिए। स्त्री हत्या करने से आपका जस भी खत्म हो जाएगा। भगवान बहुत जसस करा, आप तो भुजवंश का जस बढ़ाने वाले हैं। ये भोजवंश की कीर्ति को नष्ट मत कीजिए। आप एक स्त्री का वध कर देंगे तो आपका नाम खराब हो जाएगा। जो वीर प्रशंसा करते थे वे भी निंदा करेंगे। भगवान भोज जसस करह, आप भोजवंशियों का कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। भोजवंश के उजागर हैं, दीपक हैं। आप भोजवंश का नाम मत डुबाइए। तो ऐसे जसस्वी गुणवान बड़े बड़े वीर जब आपकी प्रशंसा करते हैं, तो यदि आप भगनी वध कर देंगे, बहन का वध कर देंगे, वही लोग जो आपकी प्रशंसा करते हैं आपकी निंदा करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए निंदा मरने से भी बढ़ करके है। भगवान गीता में कहे हैं कि संभावित सच्चा कृति मरणादति रिच्यते। एक सम्माननीय व्यक्ति की निंदा अकीर्ति वो मरणात अतिरिच्यते हैं, मरण से भी खराब है, मरण से ज्यादा खराब है। क्योंकि मर जाना अच्छा है, लेकिन कीर्ति अब कीर्ति कमा करके नहीं। और आप ये कहते हैं, और हम लोगों में मैं सुना कि आकाशवाणी ने कह दिया आपकी मृत्यु देवकी के आठवें पुत्र से है। आप इस बात पर विश्वास करके देवकी की हत्या करना चाहते हैं, यह आपके लिए योग्य नहीं है। अपकीर्ति मरण से भी ज्यादा घात खराब है। इसलिए आप बहन का वध मत कीजिए। एक तो यह स्त्री है, दूसरे आपका संबंध है इससे, आपकी बहन है, और तीसरे एक अवसर देखिए, विचार कीजिए। ये विवाह का उत्सव है, इस उत्सव पर आप यदि देवकी का वध कर देंगे, अपने बहन का वध कर देंगे, यह आपके जस के अनुकूल नहीं है। सब जगह आपकी निंदा होगी। अभी अभी जो स्नेह से बातें कर रहा था, देवकी का रथ चला रहा था, वह कंस देवकी की चोटी पकड़ लिया है, अब तलवार तान लिया है देवकी को मारने के लिए, गला काटने के लिए। ऐसी दशा में श्री वसुदेव जी उसको उपदेश कर रहे हैं, मृत्यु जन्म बतान वीरा देहे न सह जाए, वसुदेव जी ने पूछा आप क्यों वध कर रहे हैं, किस बात से? तो कंस ने कहा कि तुम सुने नहीं, तुम बहरे हो क्या? आकाशवाणी ने क्या कहा है कि इसके पुत्र से मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव समझाते हैं, मृत्यु जन्म बताम वीरा, जन्म लेने वालों की, जिसने जन्म लिया है उस उनकी मृत्यु निश्चित है। अर्धवाद शतांते बाद प्राणी मृत्यु प्राणिनाम ध्रुव, मनुष्य की आज मृत्यु हो या 100 वर्ष के बाद, पर मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है किसी भी उपाय से। तो मरना तो स्वाभाविक है, किसी भी व्यक्ति को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छा मरने के लिए तैयारी करनी चाहिए। यदि भगवान का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए व्यक्ति शरीर छोड़ दे तो उसकी निश्चित सदगति होती है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु से पहले अपने को तैयार करना चाहिए अच्छी मृत्यु मरने के लिए। वसुदेव जी समझाते हैं कि हे वीर, जन्म वतान जिसका जन्म हुआ है उनको मृत्यु उनकी ध्रुव है, निश्चित है। वो मृत्यु चाहे आज हो या 100 वर्ष के बाद या 100 वर्ष के बीच में, किसी दिन किसी रात मृत्यु हो सकती है, निश्चित है। मृत्यु अपरिहार्य है। कंस कहा, इस समय मैं राजा हूं, मुझे राज सुख प्राप्त है, यह दुर्लभ देह फिर कब मिलेगा? इसलिए इस देह की रक्षा के लिए मैं देवकी का वध करूंगा ही, तलवार से गर्दन पर चला देना केवल 1 सेकेंड का काम था। वसुदेव जी से घबराए नहीं, उनमें अपार धैर्य था, हिमालय की तरह आखिर भगवान के पिता बनेंगे, ये गुण था उनमें, ये धैर्य रखे। और कौन सा एक हाथ में तलवार लिया है, एक हाथ से देवकी का गर्दन, देवकी की चोटी पकड़ लिया है, फिर भी वे समझा रहे हैं, उनको आशा है कि इसको ज्ञान हो जाएगा, बुद्धि बदल जाएगी। लेकिन कौन सा वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था, उसके कचहरी में आभ अघासुर बकासुर उतना उधर बैठते, मनुष्य को खाने वाले राक्षस बैठते, तब कैबिनेट में बैठ करके उसको ज्ञान कैसे हो, उसको सलाह देने वाले सब राक्षस थे, दैत्य थे, तो उसको उन लोगों की संगति से ज्ञान नहीं हुआ, वशिष्ठ जी के उपदेश का असर नहीं। कोई एक दो दिन संग करे दुष्ट व्यक्ति का तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और फिर वर्षों से जो उनके बीच ही रह रहा है, मनुष्य को खाने वाले राक्षसों के बीच, अघबक आदि के समाज में, तो उसको कैसे बुद्धि हो सकती है। ठीक भगवत गीता जैसा वसुदेव जी उपदेश कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता का उपदेश हुआ अर्जुन श्रद्धा से सुन रहे थे, और यह श्रद्धा से नहीं सुन रहा था, देवकी का मस्तक काटने के लिए उद्यत था, देवकी की चोटी पकड़ लिया था, जो चोटी विवाह के अवसर पर सजाई गई थी जिसमें फूल गूंथे थे और सुगंधित तेल से जो सिक्त था, ऐसे केस को पकड़ लिया, निर्लज था, कुकर्म में इस विकर्म में उसको लज्जा नहीं थी, अपने कुल खानदान का ध्यान नहीं था, तो वो विषयी था, मायाबद्ध जीव, देह में उसकी अतिशय ममता अहंता थी, वसुदेव जी समझाए, हे वीर, देहे पंचत्वमापन ने देही कर्मानुगो वसा देहांतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम तहते बप, इस देह को छोड़ करके जीवात्मा को दूसरा देह मिलता है, और ये भी बताया कि इस देह को छोड़ने से पहले एक दूसरा देह मिल जाता है, जब दूसरा देह मिल जाता है तब व्यक्ति पहले देह को छोड़ता है, तुमको देह मिलेगा इस चिंता मत करो, जीव कर्म के वश में है और अनादि काल से कर्म कर रहा है जीव, कर्म के बहुत फल बनते हैं, इसीलिए अनंत बार शरीर त्यागना पड़ता है और शरीर ग्रहण करना पड़ता है, कर्म का बंधन बड़ा कठिन है, जब तक भगवान की भक्ति से सत्संग से इस कर्म को नहीं चला दिया जाता है तब तक शरीर मिलेगा ही, जन्म होगा और मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद मृत्यु, ये लगातार बने हुए हैं, अनादिकाल से जीव जन्म पर जन्म ले रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, लेकिन ये जन्म मृत्यु का चक्र छूट नहीं रहा। ये तब चक्र समाप्त होगा जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के भक्त की शरण लेता है, कृष्ण की शरण लेता है। ये सारी बातें वसुदेव जी नहीं बता रहे हैं, मैं थोड़ा व्याख्या कर रहा हूं, वो अलग चीज है। उन्होंने इतना ही कहा कि देह पंचत्वमापन्न यह कौन सी, इस पर विचार करो, देह किन चीजों से बना है? पांच वस्तुओं से बना है। इस देह में भूमि है, जल है, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्व है। पांच वस्तुओं से शरीर बना है, तो जब इन पांचों वस्तुओं का अपने स्टॉक में मिलने का समय आता है, देह पंचत्वमापन्न, पंचत्व को प्राप्त होता है देह। पंचत्व का अर्थ है पांच की संख्या में मिल जाता है, पृथ्वी का अंश मिट्टी का अंश मिट्टी में, जल का अंश जल में, अग्नि का अंश अग्नि में, वायु का अंश वायु में और आकाश का अंश आकाश में मिलने का समय आ जाता है। इसको कहते हैं पंचत्वमापन्न, पंचत्व को प्राप्त होता है। पांचों वस्तुएं मिल करके थोड़ा थोड़ा शरीर बना, लेकिन एक समय आएगा जब ये पांचों वस्तुएं अपने मूल स्टॉक में मिल जाती, शरीर बिखर जाता है। लेकिन शरीर छूटने से पहले देह पंचोत्तमापन्न देही कर्मानुभव से, चूंकि देही देह वाला आत्मा इस पंचभूतात्मक देह से छूटने से पहले वो दूसरा देह प्राप्त कर लेता है। देहांतरम अनुप्राप्य अनुप्राप्य देहांतरम अनुप्राप्य देहांतर करता है, दूसरा देह प्राप्त करता है। उसके पहले ही देहांतरम अनुप्राप्य इस देह से भिन्न एक दूसरा देह मिलता है, लेकिन भगवत विमुख विषय लोलु व्यक्ति को जल्दी इन बातों से विश्वास नहीं होता। शास्त्र की बात आदि को मानते नहीं। यदि किसी व्यक्ति को समझाया जाए कि मदिरा मत पियो, इसको पीने से तुम्हारा परलोक बिगड़ेगा, नरक की प्राप्ति होगी, तो इन बातों को स्वीकार करना विषय लोलुप माया मुग्ध जीव के लिए कठिन होता है। उसी मनुष्य को यदि यह कहा जाए, कोई डॉक्टर कह दे कि आप मदिरा मत पीजिए, नहीं तो आपके शरीर में रोग बढ़ेगा, बहुत पीड़ा होगी, आपको दुख भोगना पड़ेगा, तो इससे वो समझ जाएगा, डॉक्टर की बात मान लेगा, लेकिन शास्त्र की बात मान करके मदिरा छोड़ने वाले लोग बहुत ही कम हैं, और डॉक्टर की बात से शास्त्र की बात 100 गुना बेटर है। मदिरा पीने से हमारा पुनर्जन्म बिगड़ जाएगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, या अवैध स्त्री संग करने से हम नरक में गिर जाएंगे। इन बातों से उसको श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता। लेकिन वही बात यदि इस समाज में देह के रहते हुए कोई कहे कि परस्त्री गमन करने से आपकी दुर्गति होगी, नरक की प्राप्ति होगी, इस बात को वे समझ नहीं पाते हैं। पर इसी बात को यदि डॉक्टर कहे कि परस्त्री गमन करने से आपको बहुत रोग होगा, आपका हार्ट कमजोर हो जाएगा, आपको कैंसर हो सकता है, ऐसी बात जब कहे कोई, तो इस बात को संसारी व्यक्ति मान लेता है। वसुदेव जी ने जब ये कहा कि देह छूटने के पहले आपको दूसरा देह मिल जाएगा, यह सूक्ष्म बात थी। इसी देह में केवल ममता थी, इसलिए वसुदेव जी एक दूसरा उदाहरण देकर समझा रहे हैं। ब्रजन तिष्ठन पदय के न जथई वही के न गति जथातृण जलो कयम देही कर्म गति गत। जैसे रास्ता चलते हुए कोई मनुष्य रास्ता चलते समय ब्रजन, तो वो पहले एक पैर को जमा लेता है, तब पिछले पैर को उठाता है। चलने में ऐसा होता है ना, ये सबका अनुभव है, सबके शरीर के साथ है। चलने में एक पैर को 30 क्षण टिका करके तब पिछले पैर को उठाते हैं। पहले एक पैर टिका लेते हैं, तब दूसरा पैर उठाते हैं। दोनों पैर उठा करके चलना कठिन है, पतित हो जाएगा, व्यक्ति गिर जाएगा। दोनों पैर से चला नहीं जा सकता, दोनों पैर को उठा करके एक को 30 क्षण टिका करके तब चलते हैं, पिछला पैर उठाते हैं। जैसे तृण जलों का तृण पर रेंगने वाली जोंक, जोंक जब एक तृण को पकड़ लेती है तब दूसरा तृण छोड़ती है। घास पर चलने वाली जोंक को सब देखे हैं, यह उदाहरण कंस को कुछ कुछ समझ में आया, लेकिन इस अस्थूल देह में इतनी ममता थी उसको, इतनी अहंता थी कि तो इस देह को छोड़ना नहीं चाहता था। अब केवल आशंका से भय हो गया है, कि देवकी का आठवां पुत्र मेरा वध करेगा। तो उसने सोचा देवकी का प्राण विनाश कर दूं, न देवकी रहेगी न पहला या आठवां कुछ भी होगा, मैं मरूंगा नहीं। वसुदेव जी दूसरा दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं। स्वप्ने यथा पश्यति देहमिदृशं मनोरथेन विनिविष्ट चेतना दृष्ट सत्ताभ्याम मनसा अनुचिंतन प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृति। हे राजन, आप सपना देखते हैं? तब कंस ने कहा हाँ सपना देखता है। सोते समय मैं सपना देखता है। तब सपने के द्वारा समझा रहे हैं वसुदेव, स्वप्ने यथा पश्यति देह निदेश, जैसे सपना में तो देह सोया रहता है बेड पर, लेकिन सपना देखने वाला व्यक्ति देखता है। ईदृशम देह, जैसा जागृत में देह है ऐसा देह वो देखता है कि मैं कहीं जा रहा हूं, ट्रेन पकड़ रहा हूं या बस पकड़ रहा हूं, या मैं खेल कूद कर रहा हूं, मैं दुकान में बैठा हूं, इत्यादि अनेक प्रकार से किमपी कुछ भी वो जो सपना देखता है वही देखता है। इसलिए वसुदेव जी कह रहे किमपी कोई चीज देखता है, देह देखता है, और सपना में वह देखता है राजा जागृत अवस्था में जो देखा है सुना है सुनता है व्यक्ति कभी कभी राजा के सौभाग्य के विषय में, राजा किस प्रकार सुख भोग रहा है, या इंद्र के विषय में सुनता है स्वर्ग में इतने आनंद में है इंद्र देवता उर्वशी आदि अप्सराओं का नृत्य देखते रहते हैं, विमान है उनको नंदन वन में विहार करते हैं, बहुत से देवता उनकी स्तुति करते हैं, इसको सुनता है। तो जो देखा है देखता है इस पृथ्वी पर तो जो देखेगा मनुष्य जो देखा है या सुना है तो उसका चिंतन होता है, चिंतन होते होते उसको नींद आ जाती है। तो वह सपना में उसी आहित संस्कार के कारण अपने को देखता है या सुनता है। तो राजा का चिंतन करते हुए इंद्र का चिंतन करते हुए बहुत से भोग सामग्रियों को देखता है सपना में, देखे और सुने हुए दृश्यों का चिंतन करता है। दृष्ट श्रोता मनसा चिंतन पद देते तब, और ऐसा होता है कि सपना में वो इस शरीर को भूल जाता है और उसी स्वप्न शरीर में अपने को मान करके दुखी या सुखी होता है। तो जैसा व्यक्ति देखता है सुनता है उसका संस्कार पड़ता है मन पर, और उससे मन से हो, मन में उसका संस्कार करता है, मनसा अनुचिंत है, मन से चिंतन करता रहता है, पद देते तब उसी चिंतन के कारण उस शरीर को प्राप्त करता है या उस भोग को प्राप्त करता है सपना में और वापस मिलती इस वर्तमान शरीर को भूल जाता है, बेड पर सोए हुए शरीर को भूल जाता है। ये तो सबका अनुभव है, सपना अपने आप में झूठी चीज है लेकिन कितने सत्य को बताने वाली है। तो ये देह त्याग और देह ग्रहण व्यक्ति करता है, ये रोज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, रोज की घटना है। हम लोग रोज देह छोड़ देते हैं। भगवान ने भागवत में बताया है देह को विस्मृत हो जाना सदा के लिए यही मृत्यु है, और देह में अभिनिवेश हो जाए कि मैं हूं, यह मेरा है, यही जन्म है आत्मा का। तो ये प्रतिदिन देखा जा सकता है कि हम देह को भूल जाते हैं, किस देह को, शयन बेड पर सोए हुए देह को भूल जाते हैं, यहां तक कि जागृत देह को भी भूल जाते हैं, उसी देह में जीवित रहते हैं, सपना देख रहे हैं फिर भी इसी शरीर में हैं देखते, परंतु मन के कारण, चिंतन के कारण हम इसको भूल जाते हैं, दूसरे शरीर में हो जाते हैं मन ही मन। इस तरह से सपना के शरीर में जा करके प्राप्त करके मन मानसिक रूप से इस शरीर को भूल जाते हैं। तो मरना ये तो स्वाभाविक है और सपना के शरीर को ग्रहण करना ये भी स्वाभाविक है। तो मरने और जीने का अर्थ है शरीर को त्याग देना है। फिर भी कंस ये कह रहा था कि हम ये कह सकता है कि हम तो सपना के शरीर में जाते हैं लेकिन फिर जागृत देह में आ जाते हैं, तो उसके दिमाग में पूरा समझ नहीं आया क्योंकि वो स्थूल बुद्धि का था, इतनी फाइन बुद्धि नहीं थी कि वो इस फिलॉसफी को समझे। एक भागवत के टीकाकार होते हैं, इसी ज्ञान को यदि भगवान भी कहें तो कंस नहीं समझेगा, अरे भगवान का बाप हार गया है, भगवान के पिताजी हार गए वसुदेव जी, कंस कुछ नहीं समझा, फिर भी देवकी की चोटी पकड़े रहा और तलवार तानता था, हाथ में तलवार लिया है, देवकी की चोटी पकड़ा है, देवकी बेचारी हिल भी नहीं रही थी, केवल आंसू बहा रही थी। जिस व्यक्ति को ये दिखाया जाए कि तलवार तान करके अब तुम्हारी गर्दन को काट देंगे हमारा प्राण विनाश करेंगे तो कितना व्यग्र होगा, दुखी होगा। देवकी कुछ बोल नहीं रही थी, केवल कांप रही थी, आंख से आंसू निकल रहा। देखिए यह दृश्य विवाह का अवसर है, सब लोग सारे संबंधी देवकी के कारण आए हैं। देवकी को बहुत बड़ी विदाई से देवक महाराज ने विदा किया, बड़े दहेज के साथ 200 सुकुमारी दासियां दिए थे, बिल्कुल युवती, और अलंकार की हुई उनको, उन दासियों को सुष्टु अलंकार किया गया, उचित पर्याप्त गहने पहनाए गए थे, दासियां चल रही थी, सब रथ पर बैठ करके देवकी के साथ नहीं, देवकी के अगल बगल में सब रथों पर 200 दासियां बैठी थी, सब संबंधी चल रहे थे। मथुरा के राजपथ पर वह निर्लज और खल महाक्रूर निर्दय हृदय कंस देवकी का वध करना चाहते, समाज में उसको अपनी कीर्ति का, अपने वंश की कीर्ति का कोई ध्यान नहीं था, अपने विकर्म से, भगनी वध रूपी कर्म से कोई घृणा नहीं था। उस समय देवकी की क्या मनस्थिति हुई, उसके शरीर की क्या दशा सह समझा जा सकता। उस दशा में भी श्री वसुदेव जी उसे समझा रहे, अनेक शास्त्रीय दृष्टांत देकर के, लौकिक दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। एवं स सामभीर भेद बुद्धिमानों की दारुणा न निवर्तत कौरव्य पुरुषादान निवर्त। इस अवसर पर सुखदेव जी संबोधन कर रहे हैं, हे कौरव्य, हे कुरुवंश में उत्पन्न परीक्षित, तुम्हारे वंश में भी ऐसे खर हुए हैं जैसे दुर्योधन। बार बार समझाया है, स्वयं भगवान ने समझाया, नारद जी ने समझाया, विदुर जी ने, लेकिन ये खल का स्वभाव है। एक श्लोक में कहा गया है, दुष्टों को समझाने पर उनको शांति नहीं मिलती है और क्रोधित होते हैं, जैसे पय पानम भुजंगा नाम केवलम विस्वर्धन। अगर सांप को दूध पिलाया जाए तो दूध पीने से उसकी शक्ति बढ़ती है, शक्ति बढ़ने से और विष बढ़ता है, केवलम विस्वर्धन। ऐसे ही खल व्यक्ति को कुछ उपदेश किया जाए, इससे उसको ज्ञान नहीं होता, उसकी खलता, उसकी दुष्टता बढ़ती है। इसीलिए बुद्धिहीन खराब स्वभाव वाले लोगों को उपदेश नहीं करना चाहिए। उपदेश ही मूर्खान प्रकोप पाया न शांत दुष्टों को यदि उपदेश दिया जाए मूर्खों को तो उनका क्रोध ही बढ़ेगा शांति नहीं होगी। तो वसुदेव जी के उपदेश का कोई असर नहीं हुआ, इतना असर हुआ थोड़ा सा कि वो देवकी की गर्दन को काट नहीं सका, तुरंत नहीं काटा और चाहता तो काट देता, एक सेकंड की बात थी, पर देवकी की चोटी को पकड़े रहा। देवकी उसी तरह से दुखी थी, पर पकड़े रहना किसको और तलवार लिए रहना एक खल था, कौन सा क्रूर था, उसका विचार था मार देने का, लेकिन कुछ देर वसुदेव जी की बात को सुनने लगा। वसुदेव जी ने विचार किया, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जहां तक बुद्धि और बल काम करे वहां तक किसी की हत्या को रोकने का प्रयास करे। तो उन्होंने शास्त्र बल लिखाया, कंस को समझाने का प्रयास किया, अंतिम उपदेश में कहते तस्मान मंत्र तस्मान रचित द्रोहम आचर सतथा विधा, मनुष्य इस तरह से कर्म बंधन में पड़ा हुआ है, शरीर त्यागना पड़ेगा, शरीर ग्रहण करना पड़ेगा, तथा विधा इस तरह से प्रत्येक मनुष्य की दशा है, स्वयं इस कर्म बंधन में फंसा हुआ व्यक्ति कभी किसी दूसरे से द्रोह न करे, दूसरे को सतावे नहीं, तस्मान कश्चित द्रोह हम आचर सतथा विधा, किसी को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि सताने वाला व्यक्ति स्वयं कर्म बंधन में है। यदि दूसरे को सताता है तो परतो भय, उसको भय होता है, यदि तुम देवकी का वध कर दोगे तो देवकी के पिता और संबंधी तुमको मारेंगे, बदला लेंगे, प्रतिशोध करेंगे, सरकार राजा प्रतिशोध करेगा, जैसे कहीं किसी कोई हत्या कर दे तो सरकार जिम्मेदार है, वो तुरंत हत्या करने वाले को पकड़कर जेल में बंद करती है और फांसी या कोई सजा देती है। इस तरह से देवकी का वध करने पर परतो भयम, देवकी के संबंधियों से ऐसा वसुदेव जी नहीं कहा कि देवकी के पति से भय होगा, मतलब मुझसे सरकार से, यदि सबसे बच गए तो जमराज से, जो सुप्रीम जज है इस सारे ब्रह्मांड में, ये कर्मानुसार दंड देते हैं। दंड देते हैं इसीलिए उनको यमराज कहते हैं। यमराज, यम कंट्रोल करने वालों में राजा, वे ठीक कर देंगे। पाप करने वालों को कभी बरकत नहीं होती है। जमराज के दूत आते हैं और पकड़ करके ले जाते हैं जमराज के लोक में, जहां नरकों में उसे डाला जाता है। नरक कई प्रकार के हैं। श्रीमद् भागवतम में 28 नरक बताए गए हैं। तो जमराज नरक में डाल देंगे, इसलिए किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। दुख देने वाले को जमराज जी बहुत बड़े संकट में डालते हैं। शराब पीने वाले, इस कुकर्म को करने वाले को क्या दंड मिलता है? एक नरक है अयह पान, उस नरक का नाम है। उस नरक में जमराज के दूत पकड़ कर ले जाते हैं और वहां बहुत बड़ी बड़ी भट्टी चलती है, लोहा को गला करके पानी जैसा बना दिया जाता, लाल लाल लोहा, और शराब पीने वाले को उसके मुख में कंटेनर से डाला जाता है। और गाली देते हुए जमराज के दूत कहते हैं, साला शराब पिया है ना, इतने इतने दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके कभी भगवत नैवेद्य नहीं खाया, कभी चरणामृत नहीं पिया, तो लो अब पियो। लोहा को गला करके पानी बना करके उसके मुख में जबरदस्ती डालते, दो जमदूत उसके मुंह को खोलते हैं, वो भी लोहा से खोलते हैं। वो खोलता है, आय आय करता है, लेकिन उसी में दूसरे दूत अयह पान, अयह काठ लोहा, लोहा का पान कराते हैं। लाल लाल लोहा है, तप्त है, पर उसको पीना पड़ता है। इस समय तो शराब पी करके व्यक्ति ये सोचता है, मैं अच्छा काम किया हूं, मेरा पैसा है, मुझको दूसरा कैसे रोक सकता है। तो उस नरक में लोहा गरम करके तप्त करके जमराज के दूध पिलाते हैं, वो मरता है, तुरंत मर जाता है, लेकिन वो शरीर ऐसा है कि उसमें चेतना रहती है, और जब तक चेतना रहेगी वो जातना शरीर में वो पीता रहेगा जबरदस्ती। जिह्वा जल जाती है, मुख में पूरा फोड़ा पड़ जाता है, फिर भी बार बार वे पिलाते हैं। तो एक प्रकार का नरक है और एक कृमि भोज नरक है। कृमि भोजन, कृमि कहते हैं कीड़े को। जो व्यक्ति खान पान का नियम नहीं रखा है, कुछ भी खा लेता है, जीवों की हत्या करके खाता है, चीजों के मरने का ध्यान नहीं रखता तो उस व्यक्ति को कृमि भोजन नरक में डाला जाता है। कृमि भोजन नरक अनेक कीटों से कृमियों से भरा रहता है और जब उसको भूख लगती है वो हाय हाय करके भोजन मांगता है तब जमराज के दूत कृमि भोजन नरक से उसे खाने को देते हैं। बहुत गंदा पदार्थ मल मूत्र लेकर बहने वाली नदी बैतरणी नदी उसी में वो मल मूत्र को खाता है पीप खाता है और कीड़े वहां रेंगते रहते उसी को खाता है और भूख लगने पर करे क्या। एक भक्त कह दिया हमसे कि क्या बात है यदि नरक में जाएंगे तो वहां भी इंजॉय करेंगे। इंजॉय का कोई प्रश्न नहीं है केवल सफरिंग है केवल दुख भोगना है। उस दुख से छूटने का अवसर हो दिया जाता है भगवान ने दिया है ये मनुष्य शरीर परंतु इस शरीर का दुरुपयोग करके और ज्यादा नरक निवास का कारण बनता है। इस शरीर को शुद्ध रह करके भगवान का नैवेद्य प्रसाद खा करके जीना चाहिए। कोई मांस मदिरा या जीव हिंसा करके भोजन करना अच्छा नहीं। तप्त सुरमी नरक है। सुरमी का अर्थ होता है मूर्ति तप्त सुरमी। उस नरक में अनेक मूर्तियां हैं उनको लाल किया जाता है लाल किया जाता है लाल रहते हैं अग्नि से तपाने से मूर्ति लाल रहती है। लोहे की स्त्री मूर्ति और पुरुष मूर्ति दोनों प्रकार की मूर्तियां हैं। जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरी स्त्री के प्रति कुदृष्टि रखता है गलत व्यवहार करता है तो उसको उस नरक मंडला को जमराज के दूत स्त्री मूर्ति से अलिंगन कराते हैं जबरदस्ती। प्रभुपाद जी फोटो बनवाए जबरदस्ती पीछे से जूता लगा करके जमराज के दूत मारते हैं कहते हैं अलिंगन करो। और वह स्त्री का आलिंगन करके जलता है हाहाकार करता है लेकिन नरक में जाने के बाद वहां से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। उपाय इस मानव शरीर में है जब तक ये शरीर है तब तक उपाय कर लेना चाहिए। सबसे बड़ा उपाय है भगवान का नाम लेना। यदि उपाय करेंगे भगवान का नाम लेंगे तो भगवान सब क्षमा कर देते हैं। यदि गलती हो गई है या गलती नहीं हुई है तब भी सब समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे यही भगवान नाम जपना चाहिए। इससे शुद्धि हो जाएगी पूरा पूरा। हम नरक में नहीं जाएंगे लेकिन यदि शुद्धि नहीं हुई यदि प्रायश्चित नहीं हुआ हमने कोई पश्चाताप नहीं किया, उल्टे पाप में ही लगे रहे, तो दुर्गति तो निश्चित ही है। तो वसुदेव जी समझा रहे हैं कि असत कर्म करने से दुर्गति होती है, दूसरा शरीर मिलेगा, लेकिन वो शरीर कैसा होगा कर्म पर निर्भर करता है। इस मनुष्य शरीर के बाद संभावना है पशु पक्षी का शरीर मिल जाए, या मनुष्य का भी शरीर मिले तो दरिद्र का शरीर मिल जाए, खाने के लिए तरसना पड़े। इसीलिए असत कर्म भगनी बद्ध पाप कर्म मत कीजिए, इससे आपको हानि होगी, आपका भविष्य बिगड़ेगा। बहुत प्रकार से समझाया उन्होंने, भेद नीति, दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट को बताया। दृष्ट अनिष्ट है कि देवकी के संबंधी और सरकार आपसे प्रतिशोध करेगी, अदृष्ट भय है कि जमराज के दूत बहुत ज्यादा दुख देंगे आपको, ये अदृष्ट भय है, इसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन शास्त्र से मान लेना चाहिए। जो बुद्धिमान है वो शास्त्र की बात सुन करके मान लेता है, और मूर्ख व्यक्ति तो आंख से देख करके भी नहीं मानता। आंख से व्यक्ति देखता है कि चोरी करने वाले को, हत्या करने वाले को सरकार जेल में रखती है, पर फिर भी चोरी करता रहता है, ये दूसरों को दुख देता रहा, जीव हत्या करता रहा। लेकिन बुद्धि हो और भगवत शरणागति हो तब व्यक्ति समझेगा इस बात। बुद्धिहीन व्यक्ति तो सोचेगा ये तो काम है भागवत कहने वालों का, तुम अपना काम करो, चलो बीड़ी पकड़ाओ, बीड़ी धराओ, बीड़ी पीते हुए चल देता है। सुनिए सबकी, करिए मन की, सबकी सुन लो लेकिन करो अपने मन की। शास्त्र मानव जीवन की महत्ता को बताता है और भगवान के भजन की महिमा को बताता है। देवताओं ने कंस को क्यों उकसाया, क्योंकि देवता जानते हैं कि भगवान भक्तों को बचाने के लिए आते हैं। पहले बहुत पहले हिरण्यकश्यपु का अत्याचार था, देवताओं ने प्रार्थना किया भगवान से, भगवान आकाशवाणी किए उनको, कहे कि आप लोग डरिए मत, मैं मार दूंगा हिरण्यकश्यपु। तो देवताओं ने कह दिया अभी क्यों नहीं मार रहे हैं, वो इतना बड़ा अत्याचारी है, देवताओं को और सबको तबाह कर दिया है। तो भगवान ने ये कह दिया ब्रह्मा जी का वर पा करके बहुत प्रसन्न हो गया है। तो देवताओं ने कहा कि आप ब्रह्मा के वर को विफल नहीं कर सकते, क्या आपसे भी बढ़ करके ब्रह्मा हो गए? उनका वर विफल कीजिए। तो उन्होंने सुना भगवान की बात, तो देखा भी कि ये भक्त प्रहलाद से वैर करेगा तो प्रहलाद को सताएगा, तब मैं हनी से भी बरोर जीतम, तब वर द्वारा उर्जित शक्तिशाली बनेंगे हिरण्यकश्यप को मार दूंगा मैं। हमारे पास उपाय है, लेकिन भक्त से द्रोह करेगा तब। तो देवताओं ने देखा कि कंस देवकी वसुदेव जी की सेवा कर रहा है, सारथ्य कर रहा है, तो वो लोग इस शंका में पड़ गए कि भगवान अवतार लेने में बहुत देर करेंगे, कंस का वध बहुत काल के बाद होगा, इसीलिए कंस की सेवा में वे लोग बाधा दिए, कह दिए कि इसका देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। इतना सुनते रथ हाँकना छोड़ दिया, देवकी की चोटी पकड़ लिया और एक हाथ में तलवार लेकर के उत्तोलन करने लगा, दिखाने लगा देवकी का गला काटने के लिए। देवता लोग चुराहन से देखते रहते हैं कि असुरों का कब प्रभाव होगा, भगवान कब मारेंगे। इसीलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया और स्वयं गुप्त रहे, स्वयं लुका करके रहे, दिखाई नहीं दिए। फिर भी देवता देवता है, जो कुछ कहे उस परम सत्य है। देवकी का पुत्र मारेगा ही कंस को, जब भगवान ब्रज लीला को समाप्त परिपूर्ण कर लिए, वृंदावन लीला को और गुरु जी के कहने से कृष्ण बलराम को रथ पर ले गए मथुरा, उस समय कंस का प्लान था, वो सुना नारद जी से कि कृष्ण बलराम मथुरा छोड़ करके वृंदावन रह रहे हैं, तब वो भयभीत होकर के वो सोचता था कि कृष्ण का वध करें, बलराम का वध करें, इसी उद्देश्य से अक्रूर जी को भेजा। उसने वृंदावन की अंतिम लीला असुर मारण की लीला कर रहे थे कृष्ण, उस घोड़े के रूप में केसी आया था, उसका वध करते समय करके जब भगवान बैठे एकांत में केसी घाट पर, तब नारद जी आए। नारद जी ने भगवान का सारा रूटीन पढ़ दिया कि आप कल मथुरा जाएंगे, मथुरा में जा करके हम इस जग में भाग लेंगे। तो भगवान गए मथुरा बलराम जी के साथ, सखाओं के साथ और नंद बाबा के साथ। तो पंडाल के बिल्कुल गेट पर कुबलयापीड़ नामक को हाथी खड़ा किया गया, कुबलयापीड़ नामक हाथी को खड़ा किया गया। कौन सिखा दिया था हाथी वाले को, उसको गेट पर तिरछा खड़ा कर, जिससे कृष्ण बलराम को भीतर आने का जगह न मिले। स्वयं कंस बहुत बड़े मंच पर था, बहुत बड़े बिल्डिंग पर, बहुत ऊंचा। जब कृष्ण पहुंचे रंग द्वार पर, तो देखे कि हाथी विशाल खड़ा है और तिरछा खड़ा है। को देख करके, सामने शरीर को देख करके वो और अड़ गया हाथी। कहीं से भगवान को, श्री बलराम जी को जाने का पैसेज नहीं मिला। तब भगवान ने कहा, किसने कहा, अरे महावत, हाथी को ठीक जगह से खड़ा करो, कैसे पार्किंग किए हो? तो कहा कि सब लोग जानते हैं, तुम भी चले जाओ। भगवान ने कहा कि ठीक से बोलो, नहीं तो हाथी को और तुमको भी अभी जमराज के यहां भेज देंगे। इतना सुन करके वो तिलमिला गया, क्रोध में हाथी को और तेज किया और तो सूर से बहुत दूरी तक पकड़ सकता था, फिर भी वो तैयार हो गया हाथी। कृष्ण से लड़ने के लिए महावत उत्तेजित किया हाथी को। उस हाथी के पास जाकर भगवान उसके चारों पैरों के बीच में खड़े हो गए। हाथी बार बार सूंघ रहा था, ये लड़का किधर गया? तो भगवान के शरीर से दिव्य सुगंध निकलती है, उसको सूंघ सूंघ करके पता कर लिया कि कृष्ण कहाँ गए। तो वो अंत में अपने सूंड से पकड़ना चाहता था कृष्ण को, और कृष्ण उसके पैरों के बीच में खड़े थे। बार बार कोशिश किया था कुबले अपने, लेकिन कृष्ण उस तरह से भाग रहे थे जैसे मुनियों के मन से भागते हैं। मुनि लोग भगवान को पकड़ना चाहते हैं, चिंतन करना चाहते हैं, लेकिन इतना स्पीड है भगवान में कि मुनियों के फाइन मन को भी, मन से भी पकड़ में नहीं आते। वे भगवान उसके पैरों से निकल करके बाहर हो गए, पहले पीछे पूछ पकड़ करके खींचने लगे। तो हाथी इसको सह नहीं पाया, वो जोर लगा कर खड़ा था और मुड़ करके फिर पीछे की तरफ देखता है। ऐसे बार बार कविताएं से ऐसे करने में ही उसकी हालत बिगड़ गई। ये छोटा बच्चा ऐसे कुबला पे हाथी को, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, वो मिल नहीं रहा था और बाएं दाएं बार बार सूंघ रहा था, सूंघ से पकड़ना चाहता था लेकिन पकड़ में नहीं आया। तो कृष्ण उसके पैर से हो करके फिर आगे निकल गए। हाथी के बीच से छोटे कृष्ण हाथी के पैर के बीच से निकल गए। बाद में हाथी देखा कि ये लड़का तो बाहर हो गया, जा रहा है रंगशाला में, तो वो बहुत तेज गति से चल करके महावत के द्वारा हांका गया, हाथी कृष्ण को पकड़ लिया। लेकिन कृष्ण उसके चंगुल से छूट गए, छूट करके उसके सिर पर मारने लगे हाथ से, मुका से। अंत में भागे कृष्ण। भागने में एक नाटक किए गिरने का, वे गिर गए और गिर गए तो कोला पे हाथी सोचा कि अब ये गिर गया है, तो अपने दांतों से प्रहार किया कृष्ण पर। कृष्ण तो बड़ी फुर्ती से निकल गए आगे और कुबला पेड़ के दांत हिल गए जमीन पर, फर्श पर, मार्बल पर दांत लगे, उसे दांत हिल गए, बड़ी पीड़ा हुई और अंत में श्री बलराम जी भी आ गए। तो कृष्ण हाथी को पटक दिए सूंड पकड़ करके। बलराम जी पूछ पकड़ कर खींच रहे थे और श्री कृष्ण हाथी का सूंड, वही उसका हस्त होता है, हाथ होता है, इसीलिए हस्ती कहते हैं, हाथ वाला हाथी। दोनों भाई पकड़ करके खींच खींच करके उसको गिरा दिए। गिर गया तब श्री कृष्ण तुरंत उसका एक दांत उखाड़ दिए। जीवित अवस्था में कुबला पीड़ का दांत निकाल दिए। उससे खून बह रहा था, दांतों पर खून आ रहा था और खून के फवारे उठे। जब श्री कृष्ण एक दांत को उखाड़ लिए तब श्री बलराम जी दूसरे दांत को उखाड़ लिए और दोनों भाई हाथ हाथी दांत दिए, सभा में प्रवेश किए रंगशाला में। यहाँ कई प्रकार के लोग थे, पूरे मथुरा जनपद के लोग आए थे धनुष जग देखने के लिए और बहुत भारी पहलवानी का आयोजन किया गया था। रेसलिंग दोनों पहुंचे, टप टप टपक रहा था दांत से खून, वह खून भगवान के वस्त्र पर भी गिर रहा था, देह पर। इसको देह करके कुछ लोगों के मन में यह हुआ कि ये कितने असभ्य लड़के हैं, सभा में आने का ढंग मालूम नहीं है, ये अपढ़ लगते हैं, गंवार, गांव के लड़के। गांव के लड़के तो ही ये वृंदावन से आए हैं गाय चराने वाले, सब घृणा कर रहे, सब लोग नहीं कुछ लोग घृणा कर रहे हैं। और जो भक्त थे साधु महात्मा, वे सब देखे कृष्ण को परम तत्व के रूप में, यही समस्त वेदों के सार हैं। जादुओं ने अपने प्रभु के रूप में देखा, स्त्रियों ने परम सुंदर कामदेव के रूप में देखा, ये तो कामदेव से भी अधिक सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, और वहां उस सभा में बैठे हुए बड़े बड़े पहलवानों ने देखा, 10 पहलवान वहां नियुक्त थे कंस के द्वारा। यदि कृष्ण किसी तरह से बच गया तो तुम दंगल के बहाने मार दे। बड़े बड़े पहलवान देखे, उनको ऐसा दिखाई दिया कि ये तो दोनों लड़के पर्वत के आकार के हैं, पर्वत जैसा बड़ा दिखाई दिए कृष्ण, कठिन शरीर, बड़ा भयंकर देखे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु रति देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना थी वैसा देखा। कृष्ण तो परम सुंदर सुकुमार नंद महाराज के पुत्र हैं, गोपों ने देखा अपने सखा के रूप में, जदवंशियों ने देखा अपने स्वामी के रूप में। इसके बाद दंगल चालू हुआ, तो चारों और मुष्टिक मुख्य पहलवान सबसे श्रेष्ठ। चारुण बोला कि हम लोग सुने हैं कि नंद महाराज के पुत्र ये वृंदावन से आया है, तो सब लोग राजा को कुछ दिखा करके अपनी अपनी कला खुश करें, ये हमारा धर्म है, तो तुम मेरे साथ युद्ध करो, मल्ल युद्ध और मुष्टिक बलराम के साथ लड़ो। तो भगवान ने स्वीकार कर दिया, ठीक। दंगल चालू हुआ, मथुरा के लोग ये देख करके विकल हो गए, इतने सुकुमार लड़के और ये पहलवान कठोर शरीर वाले, बड़े शरीर वाले, इनके साथ कैसे मौजूद होगा। वे लोग कहने लगे सभा में, चलो चलो ये हम देखना नहीं चाहेंगे, हम देखना नहीं चाहते, कहाँ है सुकुमार लड़के, कहाँ ये हिमालय जैसे बड़े शरीर वाले बड़े भयंकर दैत्य, ये युद्ध बल और अबल का है, निर्बल और सबल का है। पहलवानी देखनी चाहिए समान शक्ति वाले, यहां तो असमान युद्ध हो रहा है। कभी पकड़ते थे कभी झटकते थे दोनों हाथ से, कभी पहलवान पकड़ते थे कभी कृष्ण पहलवानों को पकड़ते थे, कभी पटक देते थे कभी उठाना। जो भी कुश्ती के नियम हैं ये सारे नियम पालन कर रहे थे। कभी वे चढ़ बैठते थे कृष्ण के ऊपर तो कभी कृष्ण चारों को परास्त कर देते थे। अंत में जब भगवान ने देखा अपने भक्तों को कि ये विकल हो रहे हैं, हमारी थकावट को देख करके, तब जोर से तमाचा मारे चारुण को, चारुण को तमाचा मारे जोर से, तब वह चक्कर काटता हुआ वह अखाड़े में गिर पड़ा। मर गया और बलराम जी भी मुष्टि को ऐसी मुष्टिका मारे तो गुड़ियों को बंद करके एक करके मारा जाता है, इसको मुष्टिका कहते हैं। मुष्टि को मुष्टिका मारे मुक्का मारे वो भी गिर गया खाना में और मुख से खून फेंकता हुआ मर गया। इसके बाद सौ पोषण आए तो पहलवान, उन्होंने देखा कि ये लड़का बड़ा बलवान है, इसको दो मिल करके मारे। दोनों ओर से कृष्ण के पैर को पकड़ने के लिए जाने के लिए आए, दोनों पैर पकड़ करके उठाना चाहते थे कृष्ण को, मारना चाहते थे। भगवान ने अपने पैर से दाहिने पैर से एक पहलवान को मारा जोर से, वो गिर गया और छटपटाने लगा। फिर बाएं पैर से मारा तोसल को, वो भी छटपटाने लगा और गिर करके मर गया। श्री बलराम जी शेष बचे हुए पहलवानों को वैसे मार दिए जैसे सिंह पशुओं का वध करता हरिण को मारता। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, हाथी दांत लिए हुए श्री बलराम एक एक दांत मारते थे गदा की तरह और वे पहलवान मर जाते थे। जब सब मर गए हाहाकार छा गया, हाय हाय होने लगा, तब कंस ऊपर से देखा कि सारे पहलवान अखाड़ा में मरे हुए हैं। तो वो बाजा जो बज रहा था उसको रोक दिया, कह दिया तो बाजा मत बजाए, इतने पहलवान मारे गए मर गए फिर भी बाजा बजा रहे हो पागल, कहीं बाजा बंद करो। इसके बाद बोला कि